તારીખ 17/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 30
विस्तार होकर अपने आत्मा में विलीन होने योग्य है। अपना आत्म कल्याण किस तरह से आप सकते हैं ऐसा विवेक होने योग्य है। ये छह पद ऐसे हैं कि आत्म विवेक को जागृत करने वाले हैं और फिर आत्म कल्याण को प्राप्त कर सके ऐसी एक परिस्थिति होती है, पैदा होती है। ऐसा विवेक होने योग्य है। ये छह पद अत्यंत संदेह रहित है ऐसा परम पुरुष ने निरूपण किया है। परम पुरुष सर्वज्ञ ज्ञानेन्द्र परमात्मा ने ये निसंदेह है ऐसा निरूपण किया है। ना कोई शंका की गुंजाइश ये छह पद का विवेक जीव को स्वस्वरूप समझने से अर्थ कहा है। देखो जो पहला पद लिया ना आत्मा है स्वस्वरूप चैतन्य सत्या और सत्ता का प्रत्यक्ष स्वभाव जिसमें मौजूद है ऐसा आत्मा है। ये स्वरूप समझने होने के लिए चल स्थान की बात हमने जिसे जीव को स्वस्वरूप समझने के अर्थ स्पष्ट कहा है। यानी सभी का केंद्र स्थान को निज स्वरूप समझाने के लिए अनादि स्वप्न दशा के कारण उत्पन्न हुआ ऐसा जीव का अहम भाव ममत्व भाव उसको निरूप होने के यह स्वशक्ति ज्ञानी पुरुषों में देखना प्रकाशी है। ऐसा है अनादि स्वप्न दशा कहो अनादि अज्ञान दशा कहो हम मनुष्य है हम फलाने हैं ये स्वप्न दशा है। आत्मा की अजाग्रत दशा कहो या स्वप्न दशा कहो या अज्ञान दशा कहो इस कारण से सत्य दशा के कारण से जीव को क्या हुआ कि जहां अपना अस्तित्व नहीं है वहां अहम भाव हुआ। अहम भाव हुआ मैंने अपना होना पड़ा अपनी विद्यमानता अपना अस्तित्व मालूम पड़ता है कि ये मेरे हैं शरीर मेरे हैं मेरा है ये परिवारजन मेरे हैं मकान मेरे पति मेरे वो मेरा है वो मेरा है ऐसा जीव को अहम भाव होता है। अहम भाव में आत्मभाव होता है अपनत्व होता है ममत्व होता है मेरापना लगता है। उसको निवृत्त होने के लिए उसको नाश करने के लिए ये स्वप्रति ज्ञानी पुरुषों में देखना प्रकाशी है यही ज्ञान और निष्ठात्व है और उसको मिटाने के लिए इसकी देखना ने उपदेश दिया। वह स्वप्न दशा से रहित मात्र अपना स्वरूप है। वह स्वप्न दशा से रहित मात्र अपना स्वरूप है। इस प्रकार जो जीव परिणाम करे परिणमन करें परिणाम करें मैंने परिणमन करें तो सहज मात्र में वह जागृत होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त होगा और सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर स्वस्वभाव रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाए। अकेला सम्यक दर्शन मिलेगा कि मोक्ष को भी प्राप्ति हो जाए। इस स्वप्न दशा से रहित मात्र अपना स्वरूप है। अज्ञान दशा में मैंने मान रखा है कि मैं मनुष्य हूं मैं पुराना हूं पुराना हूं इससे रहित चैतन्य सत्ता का प्रत्यक्ष स्वभाव जिसमें है हर जगह वो निभाएगी तो अस्थिर है। स्वप्न दशा से रहित मेरे नास्तिक होते हैं इसकी उपस्थिति में दूसरा नहीं होगा। ऐसा जो जीव प्रबंधन करे, ऐसा मात्र मान ले ऐसा नहीं हुआ, ऐसा प्रबंधन हो जाए, काम लेने से काम नहीं होता, प्रबंधन होने से काम नहीं होता, ये बात सही ना। खाना खाने को जो जानते तो है पर कुछ अंदर नहीं आता है, उत्तर का क्या बोले सब जानते हैं, पढ़ा है, सुना है, मालूम है, लेकिन अंदर में नहीं करता। इसके लिए क्या करना, उपदेश मिलता है हम लोगों को, कितना पुण्य लेकर के आए हैं के लिए लोगों को उपदेश हमको प्राप्त है, मिलता है, मिल रहा है, किंतु परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, ये समस्या अवश्य होगी है मनुष्य जन्म में। यही कारण है इसका कि परिवर्तन करने के लिए जो प्रयोग चाहिए वो प्रयोग से हम जाने हैं, अनुभिज्ञ है, और उस प्रयोग के लिए हमारा इच्छा हमारा विवेरिया जो होना चाहिए वो नहीं। सारे साल भर हम बिजनेस करें और पूरे साल तक परिश्रम करते हैं, कुछ कमाई नहीं हुआ तो हमको आशंका हो जाती है कि पूरे वर्ष के हमारा परिश्रम बिल्कुल फालतू कर दिया, कुछ कमाई नहीं हुई, ऐसा लगता है, आशंका हो जाती है। और इधर पूरी जिंदगी जिंदगी का उत्तराध में आ गए, संध्याकाल में आ गए, और कमाई नहीं किया, उसके लिए हमको कुछ लगता नहीं है, दुख होता नहीं है, आशंका होती रहती है। ये एक आश्चर्यकारक घटना तो अवश्य है। पढ़ने वाला लड़का भी साल भर पढ़ता है और परीक्षा इम्तहान में फेल होता है, एग्जामिनेशन में, तो उसको दुख लगता है, कोई कोई तो सुसाइड कर लेता है, इतना दुख लगता है, मेरी इतना मेहनत परिश्रम की और बाद में पेपर देखता हुआ पास हो गया, कोई गलती से उसका नंबर नहीं आया हूँ पेपर में, बहुत दुख होता है। पर ऐसे भी देखा तो हमने तो परिश्रम किया था, फर्स्ट क्लास का हमारा नंबर सेकंड क्लास में आया, नंबर पर तो रोने लग गया था, लेकिन मेरे भी तुम पास हो गया हो, वही तो हुआ नहीं, क्यों होता है जो मेरा नंबर सेकंड क्लास में आया, मेरा जो परिश्रम था वो तो फर्स्ट क्लास के लिए, तो भी रोना आता है। पर पूरी जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, तो हम आराम से खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, फिर हमको ये लगता है कि परिणाम नहीं हो रहा है तो कहाँ से होगा, तो ये हमें कुछ भी लगना चाहिए वो तो लगता नहीं, क्योंकि हमने हमारे आत्महित मूल होते हुए भी और अहित होते हुए भी, हित मूल होते हुए भी पर अनेक होते हुए भी हमको भी नहीं लगता। और ये मनुष्य भाई जैसा मनुष्य परिवार समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी चिंता भी हमको जब नहीं होती है तो फिर वो प्राप्त उपदेश अंतर में उतर होती कोई जगह ऐसी योग्यता बन जाती है तो फिर वो अंतर नहीं करता। इसलिए यहाँ एक बात आई है कि जीव परिणाम करे ऐसा, तो मेरा ऐसा स्वरूप ऐसा परिणाम करे तो सहज मात्र में जागृत हो जाए, आत्म जागृति आ जाए, स्वरूप की जागृति हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और सम्यक दर्शन प्राप्त हो करके स्वभाविक मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। સ્વભાવ મોક્ષ સ્વભાવ સંબંધ મોક્ષ અશક્તિ પ્રાપ્તિ હો જાય કોઈ વિનાશી અશુદ્ધ और अन्य ऐसे भावों के विषयों में उसको हर्ष शोक संयोग उत्पन्न न हो इस विचार से स्वरूप को स्वरूप में ही शुद्धपना संपूर्णपना और अविनाशीपना अत्यंत आनंदपना अंत वही उसके अनुभव में आता है। क्या होता है कि जब ज्ञान दशा प्रकट होती है सम्यक दर्शन होता है ज्ञान दशा प्रकट होती है तो किसी भी विनाशी पदार्थ का विनाश होने से अक्षर शोक नहीं होता है विनाशी उसका विनाश होने वृक्ष का कारण नहीं बनेगा। अशुद्ध भाव में भी उनको कुछ लगेगा उसके भी दिन पड़ जाएगा विनाशी शुद्ध अन्य ऐसे भाव में न हर्ष होगा न शोक होगा नीतराज भाव रह जाएगा। हर्ष शोक तो राजदेश के परिणाम है इसे मिट करके संयोग उत्पन्न हो और इस प्रकार के संयोग भी उन्हें आगे जाकर के और संयोग प्रसंग तत्वों में प्रसंग दशा में आ जाएगा। उस विचार से मैंने उस अभिप्राय से स्वरूप को स्वरूप में ही शुद्धपना संपूर्णपणा अविनाशीपणा अत्यंत आनंदपणा अंतर्हित उसके अनुभव में आता है तो संसार दशा में मोक्ष दशा में संसार दशा में इस प्रकार का हरक शोक आदि उत्पन्न होता है संयोग वियोग को बना रहता है। मोक्ष दशा में अत्यंत आनंदपणा अंतर्हित शुद्धता संपूर्णता अविनाशी अपना स्वरूप का अनुभव में आता है अनुभव को जब होता है। सर्व विभाव पर्याय में मात्र अपने को अभ्यास से ऐक्यता हुई है। सर्व विभाव पर्याय आत्मा से भिन्न होने पर भी अभ्यास से एकता हुई है। अभ्यास मैंने भ्रम रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो फल लग जाता है अरे सांप पड़ा है सब है नहीं वहां लेकिन भय तो जिस सांप को देख कर होता है उतना ही होगा। ऐसे सभी विभाव में अभ्यास लेने में ऐसा ही हूँ राग होता है तो मैं रागी हूँ क्रोध होता है तो मैं क्रोधी हूँ मनुष्य हुआ तो मैं मनुष्य हूँ पुरुष हुआ तो पुरुष स्त्री हुआ तो स्त्री हूँ ऐसे अभ्यास से एकता हुई है। इससे मेरे विभावों से केवल स्वयं का भिन्नपना ही है केवल मेरे सर्वथा अपना भिन्नपना ही है ऐसा स्पष्ट प्रत्यक्ष अत्यंत परोक्ष अत्यंत प्रत्यक्ष यानी अपरोक्ष ऐसा अनुभव होता है। ज्ञान दशा में क्या होता है विभाव को या किसी भी कर्म जनित पर्याय को भिन्न रूप से देखता है अनुभव करता है इतना स्पष्ट रूप से अत्यंत स्पष्ट रूप से अत्यंत प्रत्यक्ष रूप से जरा भी उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है परोक्षता नहीं है अपरोक्ष रूप से अनुभव होता है। जब अभ्यास मिट गया तो अभ्यास है तो पूरा का पूरा उस रूप ही अपने को मान करके सत्र वस्तु करने लगता है। ये गैस छूट जाने से विभाव पूरा नहीं मिटता है तो भी ये मनुष्य क्रिया नहीं छूटती है तो भी उससे भिन्न पड़ा प्रत्यक्ष भिन्न पड़ा अनुभव में आ जाता है, रह जाता है। विलासिक अथवा अन्य पदार्थ के संयोग में इसका इष्ट अनिष्टपना प्राप्त नहीं होता है। कोई भी संयोग वियोग कुछ भी हो, बाहर में जो भी पूर्वकर्म अनुसार व्यवहार होता है उसमें ये ठीक हुआ है या ठीक नहीं हुआ है ऐसा कुछ नहीं लगता। जो भी है मानते हुए हैं मैं ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र को किसी से कुछ भी संबंध नहीं होता। सर्वथा सर्व पदार्थों से सर्व वस्तु से सर्वथा भिन्न पड़ा पूरा जगत से शून्य पड़ा अनुभव होता है। जन्म जरा मरण रोग आदि बाधा रहित संपूर्ण महात्म्य का स्थान ऐसा निज स्वरूप जान करके अनुभव करके यह जीव कृतार्थ हो जाता है। क्या जन्म जरा मरण रोग आदि बाधा रहित सभी प्रकार के दुख के सभी प्रसंग है। जन्म के काल में भी प्राणी को उतना ही दुख है, प्राण छूटने के काल में भी उतना ही दुख है, बहुत सबसे ज्यादा दुख है। और वृद्धावस्था और उगादि अवस्था में भी पीड़ा को और दूसरे दूसरे अनेक प्रकार के संसार के संग प्रसंग में टेंशन जिसको बोलता है सबसे बड़ा जिसको इसका है समाधान में इसका है तनाव आता है उसका दुख सबसे ज्यादा है। ऐसा कोई भी दुख का जहां प्रवेश नहीं है, ऐसा दुख की कहीं उत्पत्ति नहीं है, अवकाश नहीं है और संपूर्ण महात्म का ठिकाना जो है उन अनंत महिमावंत जो है सर्व प्रकार के दुख से रहित और अनंत सुख से संपन्न इसलिए इसका महात्म है। अनंत आनंद से संपन्न इसलिए इसका महात्म है। ऐसे महात्म का ठिकाना ऐसा निज स्वरूप को जान करके अनुभव करके ज्ञानी कृतार्थ हो जाता है। कुछ करना करना कृतार्थ होता है। जो जो पुरुष ने यह छह पद सप्रमाण ऐसे परम पुरुष के वचन से आत्मा को निश्चय हुआ है, जो जो पुरुष को हुआ है, जो जो आत्मा हो, पुरुष माने आत्मा है, जिस आत्मा को ये छह पद सप्रमाण ऐसे परम पुरुष के वचन से अपने आत्मा में निश्चय हुआ है, निश्चय किया है, वह पुरुष सर्व आत्म स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। जिसने ये क्षेत्र प्रमाण किया उसको आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुई है। आदि व्याधि उपाधि सर्वसंग से वे रहित हुए हैं, कभी भी होते हैं पर भावी काल में भी ऐसे ही होंगे। जिसको आगे जाके उपाधि किसी को प्रकार का दुख नहीं रहेगा। मतलब ये हुआ कि ये जो छह पद लिखे हैं ये आत्म सुख की प्राप्ति के लिए है। सभी प्रकार के संसार दुख का नाश और निराकुल आत्म शांति प्राप्त हो जाए इसके लिए जो सत्पुरुष ने जन्म जरा मरण का नाश करने वाला स्वरूप में सद और स्थान होने का उपदेश कहा है, वह सत्पुरुषों को अत्यंत भक्ति से नमस्कार है। अब नमस्कार वचन चालू करते हैं। इस पत्र में बाकी का जो विभाग है उसमें बहुत सुंदर नमस्कार वचन अंकित किए हुए हैं। जिस सत्पुरुष ने जिन सत्पुरुष ने जन्म जरा मरण का नाश करने वाला और स्वस्वरूप में सहज अवस्था मैंने स्थिर होने का उपदेश कहा है, वे सभी सत्पुरुषों को अत्यंत भक्ति से नमस्कार हो। उसकी निष्काम करुणा को नित्य प्रति निरंतर स्मरण करने में कभी आत्म स्वभाव प्रकट होता है। देखो विशेष बात है, ऐसे सत्पुरुषों की निष्काम करुणा को उनको विकराल हुए, किसी से उनका तो कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, कोई राग नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, विकरालता थी। फिर भी उन्होंने जगत के जीवों के केवल हित के लिए विकल्प किया और ऐसा मार्ग जिसने दर्शाया, ऐसे सत्पुरुष के प्रति निरंतर स्तवन करने वाले को भी आत्म स्वभाव प्रकट होता है। वो कैसा सत्पुरुष का स्तवन करने से आत्म स्वभाव कैसे प्रकट होता होगा? दर्शन मोह की कारभागता है, जब नजर आता है कि ये विकराल पुरुषों ने निष्काम करुणा से जगत को उपदेश दिया कि आत्महित का मार्ग ऐसा है, ऐसे पुरुषों के प्रति बहुमान होने से बहुमान करने वाले को इतना लाभ हो जाता है कि उनको आत्म स्वभाव प्रकट होने का अवकाश हो जाता है और आत्म स्वभाव प्रकट हो जाता है। ऐसे सभी सत्पुरुषों और इसके शरणार्थी हमेशा हृदय में स्थापन हो तो नमस्कार चढ़ाएगा। ऐसे सर्व सत्पुरुष और इनके शरणार्थी इतना नहीं लिया, सर्व सत्पुरुष दूसरे का बात नाम मतलब ऐसी बात नहीं लिया है, क्या कहते हैं सर्व सत्पुरुष, ऐसा कहते हैं ऐसे सर्व सत्पुरुष और इसके चरणार्विंद हमेशा हमारे हृदय के से स्थापित हो भावना मात है। इसका मतलब ये है परमार्थ हेतु भूत व्यवहार, शुद्ध व्यवहार में व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, व्यवहार हेतुभूत व्यवहार और परमार्थ हेतु। ऐसे व्यवहार के दौरान भी जीव को दर्शन मोह का अनुभव टूटता है। दर्शन मोह का अनुभव टूटना ये मुमुक्ष की भूमिका का बहुत महान और सुंदर कार्य है। कहां कहां दर्शन मोह का अनुभव टूटता है, अनुभव टूटना मैंने उसकी शक्ति पर प्रहार होता है। सबसे बलवान को है तो दर्शन मोह है और परिभ्रमण का कारण भी दर्शन मोह है। उस पर प्रहार करके उसकी ताकत को तोड़ देना है, ज्ञानी ज्ञानी होने का एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उसमें कैसे कैसे होता है, तो सुगम से सुगम उपाय यही है कि तो
से सत्ता को पहचान करके उसका बहुमान हृदय में स्थापित हो जाना है। विकल्प तो कभी आता है लेकिन प्रगति निरंतर चलती है। क्या हो हमारे जीवन में कुल प्रत्यक्ष पुरुष की हो गई तो विकल्प ऐसा बार बार नहीं आ रहे, लेकिन जब पहचान होगी तो इसकी प्रगति जो है वो चालू रह जाएगी।
बराबर
क्या होगा कि निरंतर प्रगति चालू रहने से निरंतर दर्शन होकर बाहर चालू हो जाएगा। जैसे कुछ शिल्पकार मूर्ति को गढ़ता है सारे दिन तक 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 क्या करता है उसमें से मूर्ति संभालता है। ऐसे एक अपना स्वरूप की चैतन्य मूर्ति को कंधारना है बनाना है तो जो भी लगे हैं मैन माटे जो भी लगे हैं प्रसंगों को निकालना है तो उसका निरंतर जो परिणति का प्रवाह है वो तो इस तरह से चालू रहेगा। बहुत आसानी से बहुत सुगमता से निकालने का यही रास्ता है। किसी भी जीव को ऐसा नहीं दिया कभी वो कमी दर्शन की प्राप्ति नहीं दी है, ऐसा किसी को नहीं। आजकल तो अमेरिका में ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं कार ऐसी निकली है लगभग एक कार कितने लाख की निकली है और कितने इतने अच्छे अच्छे साधन निकले हैं पर हमको तो इधर कुछ लेना देना नहीं है। चाहे टीवी में देखेंगे तो या पेपर में अखबार में उसके फोटो देखेंगे कुछ नहीं, परिणाम तो इसके प्रति है और नुकसान हमारा होता है। परिणाम इधर लगता है नुकसान हमारा होता है। ऐसे ऐसा सत्पुरुष के श्रवण के प्रति परिणाम लगता है दर्शन जो हमारा टूटता है ऐसा होता है तो सब भी इस तरह से होता है कि जिसको आत्मविभव प्रकट हुआ उसके प्रति अहोभाव आ गया तो दर्शन वो कटे जाते नहीं कटे तो दर्शन वो मंद हुए बिना दर्शन लोगों का अभाव किसी को तीन काल में होता ही नहीं। निर्देश का रचना वृत्त तीन से तीन है जो रचना वृत्त का ग्रंथ भी है पंद्रह वृत्त का रचना वृत्त का ग्रंथ है या निर्देश का जिलाग्रह में लगे चारित्रिकता परिणाम कौन सा है और प्रधान का परिणाम कौन सा है जो मुख्य गुण है। चारित्र की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, वो तो कहते हैं बात का विषय ले लो। मनुष्यता और स्वतंत्र संस्थान में चारित्र की कोई प्रधानता नहीं। तो वैसे परिणामों में हम राग को भी देखते हैं, उस काल में हम ज्ञान को क्यों नहीं देखते हैं तो परिणाम में ज्ञान क्या काम करता है तो प्रधान में किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है इसको क्यों हम नहीं देखते हैं। सभ्यता विषय तो वो है राग को देखना और तत्व ज्ञान का अभ्यास वाला विषय नहीं है। राग है सुधराग है पर इसका वो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई कुछ होता है तो उसको फायदा हम गिरे भी नहीं होता है इससे पुण्य नहीं लेकिन इसका फायदा हमें लेना भी नहीं है, लेकिन उस फायदा के सामने हमको देखना भी नहीं है। लेकिन अकेला राजमार्ग है, ज्ञान का परिणाम है, उसमें सत्पुरुष का जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। तो ज्ञान का विषय क्या होगा? आत्मा होगा। तो प्रधान में क्या हुआ कि जो दक्षिण में अनंत काल से हमारा मूल पिता है उसकी प्रक्रिया हो, ये दो फायदा बहुत बड़ा है।
लगती है तो वो अनुभव करता ही है,
तो क्या ही है। और ये सबसे बड़ी बात है, सब कुछ हुआ है ये नहीं हुआ है। क्या हमें दर्शन होने के लिए दर्शन को उत्सम होना, उत्सम होना माने क्या तो बदला, कौन बदलेगा निर्भर हो जाएगा और बढ़ेगा। सबल ताकत वाला तो भी किसी से डर बचता नहीं, और दर्शनों की ताकत बहुत बड़ी है, डरता ही नहीं है। हमको तो ये लगना चाहिए कि इसको दबाने के लिए सत्पुरुष का दर्शन एक बहुत बहुत बड़ा साधन मिल गया, जैसे हमको कोई मदद करने वाला मिल गया हमारे काम में। पर वो भी कारण कारण तो हमको इस प्रकार से भाई जात में क्या होता है, हाँ अपनी मदद होनी चाहिए। वरना क्या लगेगा, ये तो सब मंत्रशा वाली बात है, मंत्रशा की बात हम क्यों करते रहे, कहाँ तक करते रहे, कैसा अपने अपने को लगेगा। इतनी फिर मंत्रशा वाली बात है, उसमें ध्यान क्या है, प्रसाद ज्ञान को मनुष्य की भूमिका में किस प्रकार का प्रोग्रेस होता है वो बात हमारे समझ में हुए तो हम उसी के अनुकूल हमारा जो जीवन है वो बढ़ा सकते हैं। जो वो बात हमारे ध्यान में नहीं है तो पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे, रात की दुकान का होगी छोटा ज्ञान का विषय तो हमारे ध्यान में नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ी आज ये राजनी जैसे वचन गांधर्य है तो किस प्रकार का है। उन्होंने सत्पुरुष की भक्ति का जो प्रतिपादन किया है उसमें जो गंभीरता है वो इस बात की है, इसलिए उनको उन्होंने सभी कमी कमी रहस्य भक्ति ऐसा नाम दिया है। भक्ति है रहस्य क्या, इसमें भक्ति को रहस्य ऐसा विशेषण क्या, उसमें क्या रहस्य हो सकता है। ऊपर ऊपर से देखे तो राज्य मालूम पड़े तो भक्ति राग होता है। अगर संगीत पहचान से बंगाल आए तो कहना चाहिए कि भक्ति ये ज्ञान की पर्याय है, राग तो बेचारा इसके पीछे पीछे चलता है, आगे तो जो इंजिन लगा है वो तो ज्ञान का है, तो दूसरा पीछे की जो गिर जाता है। तो ऐसे तो राग का स्वभाव अच्छा है, क्या राग का स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार को पुण्य को भी पाप तत्व कहते हैं, फिर योगिंद्राचार्य भी पुण्य को पाप तत्व कहते हैं, पुण्य को पुण्य तत्व नहीं कहते पाप तत्व कहते हैं। उनको कुछ तो सारा जगत जानता है लेकिन भूलिया उसको पाप तत्व जानता है, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसकी प्रकृति अच्छी नहीं है। फिर भी क्या होता है कि जब ज्ञान सही होता है और समझा हुआ ज्ञान होता है तो जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है उनको भी शर्म के मारे बेटी से चलना पड़ता है क्या इसको बेचारे को शर्म के मारे बेटी से चलना पड़ता है, ज्ञान के पीछे चलो अपना तो अपने सामने से ही देखेगा। तो राष्ट्र वास्तव में गंगा तो उसको इसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। अपने रास्ते में रास्ता कोई भी नहीं है, इस वक्त भी नहीं है और किस वक्त भी नहीं है, रास्ता से मुख्य जो है ज्ञानी पुरुषों में ऐसी बात नहीं है। तो इसके पीछे रहस्य है कि कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यता की पात्रता को बढ़ा करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सके, ये बात है। जो बात को नहीं समझते हैं तो जिसको राज सीमा कुछ समझ ही नहीं है वो तो राज में रगड़ में जिनको अपने को लग जाएगा, या तो संस्कार के राज में या तो इधर आएगा तो देव गुरु शास्त्र से पुरुष के राज में, पुरुष का तो जीवनी राज में है, या तो संस्कार का राज में होगा या घर का राज में होगा, इससे तो कोई फायदा होने वाला तो सुनना ऐसा होता है कि और सुनना है उसमें ऐसा ही होता है। तो क्या शास्त्र साधन वाले को तो क्या होता है भक्ति करता है तो सबसे अच्छा करता है और सोना से करता है उसमें क्या उत्तर मिलता है, राज्य बनता है और तो मिलता है शिवराज बनता है, शिवराज बच्चों बोलते दोनों में क्या होता है तो कसाई संबंध होगा दोनों और शास्त्र में भी कसाई संबंध हुआ भक्ति में कसाई संबंध हुआ। सौभाग्य आपके प्रति तो कोई ज्ञान के लक्ष्य नहीं है, हमारा अभ्यास नहीं है तो क्या होगा, इसका अहम भाव होगा, इसका अहम भाव होगा दोनों को, और अहम भाव होकर के क्या होगा दिक्कत खुश हो जाएगा। शास्त्र ज्ञान का अहम भाव हुआ शास्त्र निवेश, भक्ति भाव का अहम भाव हुआ इंद्रिय तो भी निवेश है, ये मिथ्या को सपोषण करने वाला तो मिथ्या को वर्तन में छोड़ कर अपना ज्ञान है तो मिथ्या को लेने विजय हो जाएगा, क्रिया करने वाले को हो जाएगा, उपवास करेगा, तपस्या करेगा, कोई भी करेगा, अहम भाव करेगा, क्या करेगा, पर्याय दृष्टि को मिथ्या दृष्टि माने पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि को पर्याय में जो फेरफार हुआ उस फेरफार में अहम भाव होगा होगा और होगा ही, चाहे वो शास्त्र प्रजय करे, चाहे तपस्या आदि व्रत में संयम करे, चाहे भक्ति आदि करे, वो संगम निवारण करके कुछ भी करे तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई विसंगा नहीं है, रोग संगा नहीं करेगा तो नियम से वो पर्याय दृष्टि से मिथ्यात्व को भी पुष्ट करेगा, पर्याय की दृष्टि को भी पुष्ट करेगा। तो इसके लिए गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया कि पहले से ही पूर्णता का लक्ष्य कर लो, शुरुआत यहाँ से नहीं करोगे तो पुष्ट करने का ही तुमको प्रसंग बनेगा, दूसरा वैसे खुद पाओगे ही नहीं, खुद करते ही नहीं, खुद मतलब कोई रास्ता ही नहीं होता कि नहीं कुछ मिला, ये तो कुछ हो जाएगा, ये तो सवाल कर दिया है इस सूत्र को दिखा करके तो बता करके तो सवाल कर दिया जब क्या रास्ता है तो नहीं छूटा है क्योंकि पर्याय दृष्टि पुष्ट नहीं होती है ऑटोमेटिकली, क्यों हमारा खेल पूर्णता से शुरुआत होने भी भटकने का है तो हर पर्याय में ये लगेगा समय तो आनंद हुआ भाग रहा है, समय दर्शन होने पर ये लगेगा या तो ब्रह्म दृष्टि होगी या फिर भी पर्याय का ज्ञान होगा अपने मुनि होगा गर्भव्य होगा देखेगा और बहुत सामर्थ का है मेरा पर्याय का अहम भाव अपने वही हो गई तो मिथ्यात्वावस्था से लेकर के पूर्णता तक यही स्थिति रहती है, एक लक्ष्य का विषय बनता है उनके मुख्य रूप में के हाँ मोक्ष 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 पूछा था गुरुदेव को आदमी सूत्र में पूर्णता में कृपा पूर्ण होना या
करते तो हम तो निकाल देते हैं।
छोटा हो गया उनको पैसे निकाल देते तुम्हें क्या होगा उसको मुझे कहीं देखने में बजा है बना है तो कितनी मेहनत करो अपने को क्या क्या मेहनत भी इतना करता है तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि कुछ बात मनुष्य में कुछ भेद है कुछ रहस्य है भीतर में कुछ बात समझ में आए पर कभी तो सब बात ही आएगी ये तीन चार पैराग्राफ पुस्तक में पद से सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप यह जिसके वचन के वचन से अंगीकार करने से समझ में मदद होता है क्या यह छत्र से सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप देखो आत्मस्वरूप ने लिया यह छपद से प्राप्त ऐसा आत्मस्वरूप जिसके वचन वचन से अंगीकार किए शहर में प्रकट होता है जो आत्मस्वरूप तजुर्बे से प्रकट होने से सर्वकाल भी संपूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाता है कोई तकलीफ कोई दुख एक दुख का अंश भी नहीं है निर्भय हो जाता है सत्य भय से निर्भय हो जाता है उस वचन के कहने वाला ऐसे सत्पुरुष के गुण की व्याख्या करने की मेरे में शक्ति नहीं है अशक्ति है देखो इतने कलम चलाने में समर्थ है फिर भी कहते हैं कि उनको व्याख्या करने में मैं तो असमर्थ अभी तक इतनी हिम्मत करते हैं तो तेरा है ना क्योंकि तेरा तो पत्नी लाए आगे जिनेन्द्र भगवान को पीछे रख दिया है सत्पुरुष को इतने आगे कर दिया कि जिनेन्द्र भगवान को पीछे रख दिया तो क्या वो स्थान का ज्ञान नहीं होगा कृपा बंदे को ये तेरे में स्थान तक भगवत प्रश्न का है इतना मामूलिक प्रणाली का चौदह स्थान का ज्ञान नहीं होगा क्या समझ नहीं होगी क्या तुम इसके पीछे क्या रहस्य ऐसा लिखते हैं तो इसके पीछे रहस्य क्या मुझे इससे ज्यादा शिक्षक है कि उनका सत्संग करने में कोई मंगल में जाना पड़े उसका सत्संग करना हो तो जंगल में खोज करना पड़े कि किस गुफा में किस कंदरा में किस पर्वत के किस नदी के तट पर वो विराजमान है तो ऐसा घुमाना था बालक लोग राजा महाराजा घोड़ा देकर के खोज में तो निकलता क्योंकि सड़क तो चले नहीं गाड़ी पे चले नहीं मेन रोड पर कोई जान बजा कर बैठते हैं तो मिल जाए रस्ते पर उसको तो रिश्ते में जाना पड़े गिरी चंद्रा में तो घोड़ा देकर तो वो लोग एक एक मेरे सात चार दिन तक खोजते रहे जब उसका दर्शन हो गया और दर्शन हो गए तो भी उनके उद्देश्य देने के लिए बंधे हुए और मौत गया एक अक्षर में बोले बड़ा चक्रवर्ती आ जाए तो आ जाए ऊपर से नहीं आ जाए तो आ जाए वो नहीं बोले तो नहीं अपने जान में लगे मेरा काम करता हूँ घोड़ा भी तक नहीं चलता है मैं से बोलता और जिनेन्द्र परमात्मा तो वैसे ही पांच सौ हमें पिछर बैठते हैं वो तो आपके सामने बैठते ही नहीं तो मनुष्य ऊपर है तो उसका स्थान भी ऊपर है तो आकाश नहीं रहता है वो शरण में जाओ तो भी पांच सौ दिनों सुनते हैं आमने सामने हम लोग बात करते हैं ऐसा मौका तो सत्पुरुष के अलावा पर वो भी इस तिहारे छोटे कम दूसरा है आपको प्रश्न उठे उसी वक्त उत्तर मिले वो ऐसे वो भी बंधन हो जाने उसको भी ऐसा बंधन नहीं है क्यों तो वो तो दूसरा है हमारे ओम कर रहे छोटे जी जब छोटे जी नहीं छोटे जी तो नहीं छोटे जी उसके लिए वो कोई बंधन नहीं है तो आप देखो आपका तो काम हो जाएगा, आपको काम से मतलब है, सब तक से मतलब है, मम से मतलब है, क्या मतलब है, इसलिए उन्होंने लिखा है, तो बुरा बात लिखा था तो मुझे क्या प्रैक्टिकल साइड क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत मनुष्य के लिए बहुत सुविधा है, वो परमात्मा
जैसे
तेरा कोई पुराण पुरुष उनको तेरे में और सत्पुरुष में कोई अंतर समझ में नहीं आता है। देखो हमको परमात्मा में और सत्पुरुष में अंतर ही हमको तो देखने में नहीं आता है, अंतर तो नहीं देखने में आता है। थोड़ा और बात हम करते हैं कि तेरे से भी हमको तो सत्पुरुष ज्यादा अच्छा लगता है, पर यही कारण है तो वो लोग इतने विद्रह हो गए तो हमारा प्रश्न का उत्तर अभी का भी हमको मिलता नहीं, कुछ भी हमको वेट होना पड़ता है, तो तेरे से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका कारण वो दूसरा भी एक है तो इसके आगे नहीं है। पुरुष ने संयोग दृष्टि से त्रिकाल परमात्मा को कब्जे में ले लिया है, तो उनको वक्त पड़ा है, जैसे भक्त के आदि भगवान होते हैं ना, ऐसी बात हो गई है, तो उनके वश है, तो उनके वश हो गया तो मैं तेरे किसको भूलूंगा, उनको उनके वश का भजन करूँ, किसको करूँ, कौन बड़ा मेरे लिए, तो कौन बड़ा है बताओ। और उनको सत्पुरुष से पहचाने बिना तुमको भी हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि तुम तो केवल ज्ञानदारी हो, केवल ज्ञान के समय तो आती नहीं है, सबने सरस्ता में ये व्यवस्था में तो आती नहीं है, मिथ्या व्यवस्था में सत्पुरुष की पहचान आती है, तो उसको पहचान है बिना तेरे भी पहचान हमको नहीं हुई, इतना तेरा दुर्गम पड़ा है, तुमको पहचानने में तो थोड़ी मुश्किल ही है, मैं तो इतनी मुश्किल ही नहीं है, तो हम लोग तो स्वार्थ है स्वामी, जो तकलीफ वाली बात है वो हम तक छोड़ करके जो आसानी से हो गए उतना काम करेगा, ऐसा दुर्घटना उनको सत्पुरुष के प्रति अधिक प्रेम उत्पन्न करता है, क्योंकि तुम वश हो जाने पर भी वो उन्मत्त नहीं हुए, वो पागल नहीं हुए, जब मिल गया ऐसा परमात्मा हमारे कब्जे में, वो गंभीर है तो परमात्मा को कब्जे में रख कर भी और किसी को पता नहीं लगाने देता तो किसके कब्जे में क्या पड़ा है वो बताने नहीं देता, और तेरे से भी कुछ सरल है, इतने जल्दी से नहीं बोलता और सरल सरलता से उत्तर दे देता है, तो तेरे से भी वो सरल है, क्या कलम चलाइए, ये अच्छा है, अब तो तुम को काम करे, अब तो परमात्मा को कहते हैं कि अब तो तुम बताओ ऐसा हम करें, उनको क्या करना चाहिए, तुमको पहला भजन करना या इसका भजन करना, फिर क्या करना बताइए, आप ही कहेंगे कि सब सत्पुरुष से पैसा क्या हो गया था इतना लीजिए, पर ऐसा हमने कहा कि तुमको बुरा मत लगाना, बुरा मन लगाना, जो मेरे बात ऐसा करते हैं, जो परमात्मा हमने ऐसा कह दिया तो बुरा मत लगाना, क्यों क्या आपसे भी हमने सत्पुरुष की स्तरना अधिक कर दी, ज्यादा स्थिति कर दी तो इसका बुरा आप मत लगाइए, तो सारा जगत तुम्हारा भजन करता है, अगर एक हमारे समय हो तो तुमको क्या फर्क पड़ता है, हिसाब किताब बता दिया भगवान को, बहुत गलत चलाइए, बहुत गलत है, ऐसा काम रखा है, हम कहते हैं हमारे में शक्ति नहीं है, दुनिया ही कहते हैं इतना लिख करके कहते हैं कि सत्पुरुष की स्थिति करने की हमारे में शक्ति नहीं है, क्या लिखे तो व्यापार कर लो, इसलिए व्यापार कर लो, अरे सत्पुरुष की बात तो बहुत हमने सुनना है, अगले बात नहीं जाते આપણને તો વધારે ખબર પડી.